السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. देखते हैं तफसीर सूरतुल बकरा आयत नंबर 102 से 108 तक। हमने पिछली आयत में ये बात समझ ली कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के जो जो उनको चुना था, उन्होंने क्या तर्ज़े अमल इख्तियार किया, किस तरह के उनके जरायम थे। उनमें से एक ये भी था कि उनको किताब दी गई लेकिन किताब को उन्होंने पसे पुश डाल दिया, यानी किताब को ना पढ़ा, ना समझा, ना सीखा, और ऐसे उसके साथ मामला किया कअन्नहुम ला यालमून, जैसे कि वो जानते ही नहीं कि ये कोई किताब है, कोई अल्लाह ताला की तरफ से आई है, कोई इसका हक है हमारे ऊपर इस किताब का। अल्लाह ताला ने ये किसी रीज़न से हमारे लिए भेजी है। कुछ भी उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, किताब को पसे पोश डाल देने के अंदर ही ये सारा माना आ गया कि उनका किताब के साथ क्या रवैया था, क्या उनकी डीलिंग थी किताब के साथ। तो ये हमारे लिए भी, जैसे हमने बात की थी कि ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी एक सबक लेने की बात है कि हम इस चीज़ को समझें कि अब ज़रा गौर करें हमारा किताब के साथ किस तरह का ताल्लुक है, कहीं वैसा ही तो नहीं है जैसा कि बनी इसराइल का था, कि ना तो इसकी तिलावत करना, ना इसको समझना, ना इसको सीखना, ना इसके ऊपर अमल करना, बल्कि इसकी जगह और कवानीन या और शरीयतों को या और लॉज को समझना कि अमेरिकन लॉ या ब्रिटिश लॉ मेरे मुझे ज़्यादा हक देता है, बजाय कि मैं इस्लामिक लॉ की तरफ जाऊं जो कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बताया हुआ है, तो इससे बेहतर है कि मैं वो करूं क्योंकि उसमें मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो हमारा ताल्लुक क्या है, ये आयत हमें इस तरह से एक हमारे लिए आई ओपनिंग है और एक तरह हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम इस चीज़ को सोचें तो सही कि हमने कुरान को तो नहीं पसे पुश डाल दिया हुआ। और जब कोई उम्मत, कोई कौम अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली हिदायत को इस तरह से इग्नोर कर देती है, पसे पुश डाल देती है, उसके साथ ताल्लुक नहीं रखती, तो जो एक वैक्यूम है ना, वो कहीं तो भरेगा, कुछ तो होगा, कोई चीज तो उसकी जगह लेगी ना। वो फिर कौन सी चीज हुई जिसने उसकी जगह ली? वो था जादू, टूने, टोटके, तावीज, अमलियात, तोहमात, सुपरस्टिशियस चीजें, ये चीजें थीं जिन्होंने उसकी जगह ले ली उन लोगों में। अब अपना देखते जाइए कि किस तरह से ये रेलेवेंट हैं आज के भी वक्त में। ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और ये जो अगली आयत आ रही है, जो हमारी आज की पहली आयत है जिसको हमने समझना है, काफ़ी लंबी आयत है, जादू के मुतालिक है, और जादू के बारे में बहुत सारी बातें इसके अंदर आपको समझ में आएंगी। पहली बात ये, जब जब दुनिया में अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई हिदायत के साथ लोगों का ताल्लुक टूट गया और टूट जाता है, तो उसकी जगह फिर ऐसी फजूलियात आ जाती हैं जैसे कि जादू। और ये बनी इसराइल में यहूदियों के अंदर आज तक बहुत ज्यादा कॉमन है। कबाला मैजिक का आपने नाम सुना होगा, ये वो सिखाते भी हैं, इसका मॉडर्न नाम भी एक है, लेकिन उसके जरिए वो कहते हैं हम आपको बताएंगे आपने फ्यूचर कैसे जानना है। फ्यूचर की जानने के लिए लोगों को बहुत शौक होता है ना, ये जादू ही की किस्म है। जादू के बहुत सारे रूप हैं, यानी ये बहुत सारी ब्रांचेस कह लें, बहुत सारी एक अकसाम कह लें, जिनमें एक किस्म जिसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है ये वो है जो जिन्नात के जरिए जादू होते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा भी हैं जो बहुत आज के दौर में तो बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं, एस्ट्रोलॉजी, सितारों से किस्मत के हाल लोगों को बताना, न्यूमरोलॉजी, जो ये गिनती नंबर्स डाल डाल के और फिर उससे करते हैं, फिर फॉर्चून टेलिंग वैसे भी जो आगे का फ्यूचर का हाल बताने के लिए। इसके अलावा ब्लैक मैजिक तो है ही, ब्लैक मैजिक ही वो मैजिक है, काला जादू उसको कहते हैं, जो है ही काला, सोचें कि वो खुद ही उसको काला कहते हैं, खुद आप सोच लें कि वो क्या होगा। और मैं पर्सनली अपने आपको बात बताती हूँ कि मैं जब पहले इस चीज़ को इतना नहीं समझती थी और मुझे लगता था कि शायद कहीं कहीं ऐसा होता होगा, ऐसे ही पता नहीं, इतनी जो कोई आज बातें मैं आपको बताऊंगी कि ये पता नहीं कहीं शायद होता हो, ऐसे ही है, इतना मुझे इसका पर यकीन नहीं आता था कि इस तरह से जादूगर बना जाता है या इस तरह से जादू किया जाता है, ये चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और ये पता था हाँ ये कुफर है, कुरान में है ये कुफर है, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि किस तरह ये कुफर बनता है, अनटिल के मेरे सामने लोगों ने ऐसी बातें बताई फर्स्ट हैंड अपने एक्सपीरियंसेस, और दुनिया में भी जो हालात हुए और उसके पीछे जो चीजें सामने आई तो बहुत अच्छी तरह अब समझ आ गया कि अल्लाह अकबर, ये तो इतना बड़ा कुफर है, शिर्क है, कुफर है, और सीधी एक शैतानी चीज है। और एक कुफर तो वो है ना कि भैया आप बुतों को कहते हैं कि कोई कोई बुतों को कह दे कि ये खुदा है, या एक कुफर है कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना लिया, या कुछ ये कुफर वो भी है कि शैतान को खुदा बना लिया जाए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और चूंकि ये अब चीजें इतनी बाहर आ चुकी हैं कि अब तो कोई इसके अंदर शक रह ही नहीं गया, कोई वैसे कहता हमें कि कोई शैतान की भी पूजा की जाती है तो शायद हम कभी भी ना मानते, और शायद दुनिया में एक सडल फॉर्म के अंदर ये चीज पाई जाती तो थी कि भाई शैतान की पूजा, जब बुतों की पूजा करते हो शैतान के कहने पे चलते हो, या अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हो तो शैतान के कहने पे चल रहे हो, तो शैतान की पूजा उस तरह से की कर ली, तो एक इनडायरेक्ट वे। लेकिन डायरेक्टली कभी कोई कहे कि शैतान सैटन वर्शिपर्स हैं, ये इस किस्म के कल्ट्स शायद इंसानी तारीख में कभी थे नहीं, जो अब बिल्कुल सामने आ चुके हैं, और बरमला खुलेआम सैटर्न वर्शिप होती है और को कहते हैं कि हम शैतान को पूजते हैं। तो ये जो जादू की सारी गेम है ना, इसका डायरेक्ट ताल्लुक शयातीन के साथ है, और ये कुरान कह रहा है। तो देखते हैं इस आयत को, वत्तबाउ, वो पैरवी करने लगे, कौन, ये जो पीछे बात हो रही है उसी से रिलेटेड आप बात को लेकर चलते हैं हम, कि जब उन्होंने अल्लाह ताला की किताब को तो वरा अधूरी ही फेंक दिया, पीछे फेंक दिया पीठों के, ऐसे जैसे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर और करा क्या उन्होंने, क्या उनके मशगले थे, क्या क्या करते थे, फिर वो पीछे पड़ गए, पैरवी करने लगे माँ जो तत्लु शयातीन, जो शैतान पढ़ते थे, आला मुल्क की सुलेमान, सुलेमान अलैह सलाम के दौर में, बादशाहत में, उनके किंगडम में, उनकी हुकूमत में जो शयातीन पढ़ा करते थे वो उसके पीछे पड़ गए। और यहाँ पे आपको ये भी अगर याद हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर यहूदियों का सबसे गोल्डन पीरियड था, वो उनका दौर ये समझते हैं अपने लिए कि सुनहरी दौर, उनके अरूज का दौर था। और इन्होंने ये मशहूर किया हुआ था कि अब ये लोग फंसाने के लिए लोगों को कुछ तो कहेंगे ना, ऐसे तो नहीं कहते कि भाई कुछ ये चलता नहीं है, बताएंगे ही कि भाई जादू चलता है और देखो इससे क्या क्या जबरदस्त काम हुए। और उन्होंने मशहूर कर दिया हुआ था, लोगों में ये बात मशहूर थी कि सुलेमान अलैह सलाम भी तुम्हें पता है जादू के जोर पे ही तो हुकूमत करते थे, जब भी तो उनके पास ये परिंदे और जिन्नात उनके काबू के अंदर थे और इतने हवाओं पे उनका जोर चलता था और पता नहीं क्या क्या जो भी चीजें ये सारा करते थे, वो इसीलिए तो करते थे कि वो उनके पास जादू था। तो जादू देखो कितना जबरदस्त, क्या बात है, उससे तो क्या क्या काम हो जाते। तो आपका भी काम जादू से चलेगा, आपके जो फंसे हुए काम है सब हो जाएंगे। अच्छा, ये उनके अंदर क्या थी, एक चीज मशहूर थी। अब एक तो उन्हें इतिबा की, अब इसको जरा ब्रैकेट में कर लें, वामा से लेके अन्ना से सहर तक, इसको जरा ब्रैकेट में करें। एक तो वो उसके पीछे पड़ गए जो मा तत्लु शयातीन अला मुल्के सुलेमान। पहले हम सिर्फ आयत को समझते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी तफसीर को ज्यादा डेप्थ में देखेंगे। और किसके पीछे पड़े, ये बीच में एक जुमला आया जो अमा कफारा, ये इसको जुमला मोतरजा कहते हैं, यानी ऐसा जुमला जो बीच में एक बात आ गई है, जो कलाम के बीच में, जैसे मैं कहूं कि मैं फलां जगह गई और वो भी मेरे साथ थी, वही जगह जो तुम जानती हो जहां पे हम पहले गए थे, और फिर हमने जाके वहां पर बहुत फन किया। अब ये जो बीच में मैंने बात की ना, वही जगह जहां पे हम पहले गए थे, ये इस सेंटेंस के बीच में एक, यानी एक एडिशनल एक चीज ऐड हुई जो कि उससे बात से ताल्लुक नहीं था कि हम कह रहे हैं कि मैं और वो गए और फिर हमने वहां पे बहुत फन किया। असल तो बात ये थी, मैं हम वहां गए और हमने वहां मजा किया, ये थी। लेकिन जो बीच में बात आई, वो ही जगह जहां पे हम पहले गए थे, ये बीच में ऐसी चीज है जो एडिशनल आई है। यहां पर भी ये जो आपको मैंने ब्रैकेट में किया, ये एक एडिशनल चीज बीच में कही गई, और असल ये है जो आगे आ रहा है, हम उसको पहले देख लें। और किसकी पैरवी की, वमा, और जो उनजिला नाजिल किया गया था, अलल मलकैनी, दो फरिश्तों पर भी, बाबिल बाबुल में थे वो दो फरिश्ते, बेबलोन में, हारूत व मारूत, उनके नाम क्या थे, हारूत और मारूत। उन्होंने बजाय इसके कि अल्लाह की किताब के ऊपर चलते, वो इन दो चीजों के ऊपर के पीछे पड़ गए, एक वो जो शैतान पढ़ते थे, वो शैतान क्या पढ़ते थे, यही जादू जंतर मंतर जिन्नात की, ये और जिन्नात भी, सारे जिन्नात शयातीन नहीं होते, मोमिन जिन भी होते, लेकिन जो शैतान जिन है उनकी चीजें वो पढ़ने शुरू हो गए, जादू की किताबों के पीछे पड़ गए। और जो हारूत और मारूत के ऊपर नाजिल किया गया था, दो फरिश्ते थे, हारूत मारूत उनका नाम था। अब ये जो बीच में बात कही गई, वमा कफर सुलेमान, अब इसको समझे, सुलेमान ने कुफर नहीं किया, वलाकिन शयातीन कफरू, लेकिन शैतानों ने कुफर किया, युअल्लिमून अन्नासे सेहर, वो लोगों को सेहर सिखाते थे, शैतान जो थे जिन और इंसानों के जो शैतान थे वो लोगों को सेहर सिखाते थे। और यहाँ पे शयातीन में जिन्नों के भी शयातीन आप कह लें, ज्यादा तो जिन्नों से ताल्लुक होता है, इंसानों के भी शयातीन कह लें, वो लोगों को जादू की टेक्निक्स सिखाते थे। अब मैंने आपको जैसे बताया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्या इन्होंने मशहूर कर दिया था कि सुलेमान ने भी अपनी हुकूमत किस तरह की, जादू पे की है। अब इतना ये बात कंफर्म कर दी लोगों में, अल्लाह ताला ने इस बात को यहां पर नगेट किया। वमा कफारा सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफर नहीं किया। कुफर किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? वो तो सबको भी पता है, पैगंबर तो कुफर नहीं कर सकते। यहाँ पे जादू को कुफर कहा जा रहा है। उन्होंने कुफर नहीं किया, लेकिन शैतानों ने कुफर किया। कैसे कुफर किया? युअल्लिमूनन्नास सेहर, वो लोगों को सेहर सिखाते थे। मजाई बात। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि इसको बीच में लाया गया कि ये ना कभी समझना, ये तुम्हारे जहन में ना कभी आए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जादू टूनों से कोई ताल्लुक था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो आज मुसलमानों में भी नक्शे सुलेमानी कह के और ऐसी चीजें हैं, हालांकि अल्लाह का कुरान बयान करता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई ताल्लुक जादू से नहीं था। उन्होंने तो बल्कि जादू की किताबों को लेकर अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया था, ये कोई नहीं इनको पढ़े। और जब वो फौत हो गए तो लोगों ने फिर निकाल ली, और उन्होंने कहा यही तो थी जिसकी बलबूते पे तो सुलेमान हुकूमत किया करते थे, ये देखो। और किताबें निकाल के फिर शुरू कर दी उन्होंने वही काम। तो लोगों का इंटरेस्ट किस में था? जैसे आज इंटरेस्ट है ना लोगों का, आप देख लें कि हर हमारे मुल्क में तो हर वॉल चौकिंग होती है, तो हर दीवार पे आप देखेंगे आमिल बाबा ना, पता नहीं क्या नागर और पता नहीं क्या क्या, और काले जादू का माहिर और खोपड़ी, और वो भी हड्डियां भी लगाई होती हैं। और इवन इसके ऊपर मैंने देखा, इंटरनेट पे लिखा हुआ था, हर जायज और नाजायज काम कराने के लिए राबता करें। भाई इसी से कोई इंसान अकल कर ले कि जायज काम तो है, जो खुद कह रहा है नाजायज काम, तो उसका आप खुद बताएं कि वो नाजायज काम क्या होगा। महबूब कदमों में 24 घंटे के अंदर आपका काम हो जाएगा। अल्लाहू अकबर, ऐसे दावे सोचें आप, खुद अपनी अकल इस्तेमाल करें। पैगंबरों ने नहीं ऐसे दावे किए, इनका शर के साथ ताल्लुक है। और आगे आपको पता चलेगा इसका अंजाम क्या है। लोग भागते तो हैं डेस्परेशन में, जब हाँ कोई बीमार हो गया, कोई किसी का कुछ रिश्ता नहीं हो रहा, किसी की कोई शादी में मसले आ रहे हैं, किसी का शौहर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया है, तो अब वो कहते हैं कि अब हम क्या करें। अब इतने डेस्परेट हैं कि वो इनके पास चले जाते हैं और अपनी आखिरत खराब कर लेते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम, याद रखे, अल्लाह के नबी, वो कभी कुफर के अंदर कैसे हो सकते हैं? ये तो ये हैं जो कुफर करने वाले हैं। और सेहर का मतलब क्या होता है? ऐसा असर जिसका सबब मालूम ना हो, सबब छुपा हुआ, उसकी इफेक्ट्स तो नजर आ रहे हैं लेकिन क्या चीज है कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा, अब ये, और दूसरा जो हारूत और मारूत पे नाजिल किया गया था, पहले आयत को समझ लेते हैं फिर तफसील देते। वमा युअल्लिमानी, और ये हारूत और मारूत नहीं दोनों सिखाते थे, मिन अहदिन किसी एक को भी, क्या नहीं सिखाते थे, वही सहर, हत्ता यहां तक कि यकूला, वो दोनों कहते थे इन्नमा नहनु फितनतुन, बेशक हम फितना है, आजमाइश है, फला तकफुर, तो ना तुम कुफर करो। अच्छा, अब जब ये लोग क्या करते थे कि ये जादुओं के पीछे पड़ गए थे, जो शयातीन जादू सिखाते थे उनसे भी ज्यादा इनको ये था कि जो हारूत और मारूत का जादू था। हारूत और मारूत दो फरिश्ते थे, जैसे यहां पे आया, ये दो फरिश्ते अल्लाह ताला ने जमीन पे भेजे थे लोगों की आजमाइश के लिए। क्योंकि इस वक्त लोग जादू के पीछे बहुत पड़े हुए थे, अल्लाह ताला ने इन लोगों को आजमा लिया, जैसे कि अल्लाह ताला ने सब्त वालों को आजमाया ना। सब्त में भी क्या था कि सैटरडे के दिन मछली नहीं पकड़नी, और सैटरडे के दिन ही मछली सबसे ज्यादा ऊपर आती थी। तो इसी तरह इनकी आजमाइश हो गई इस जादू के, इसके सीखने और सिखाने और इन चीजों के साथ। हारूत और मारूत के पास वो जादू के फॉर्मूले थे, अब वो किसी को नहीं सिखाते थे, मगर वो लोगों को कहते थे कि देखो ये जो है ना, ये हम आजमाइश के लिए आए हैं, तो तुम कुफर ना करो। जादू के ये फॉर्मूले उनको बता तो देते थे, लेकिन तुम कुफर ना करना, यानी तुम ये जादू को नहीं प्रैक्टिस करना। जैसे कोई मसलन बताए कि हिंदुइज्म में ऐसे है, या उनका अकीदा ये है, उनका अकीदा ये है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इख्तियार कर लो, तुम वो करना शुरू कर दो। वो तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो लोगों को बता तो देते थे कि ये देखो इस तरह से किया जाता है, लेकिन उनको कहते थे कि ये करना नहीं है, ये जायज नहीं है, ये हराम है, उनको बता देते थे, लेकिन लोग फिर भी नहीं बाज आते थे। क्योंकि तो जब इंसान की ख्वाहिश उसको खुदा बन जाए ना, कि बस मुझे ये करना है, ये मुझे चाहिए, अब महबूब कदमों में क्या है भी, वो बस किसी तरह ये मिल जाए, अब उसके लिए वो हर तरह का जायज नाजायज हर एक काम करने को तैयार हो जाते। तो फयतालमूना यानी वो सीखते थे, मिन हुमा उन दोनों से, माँ जो युफर्रिकूना तफरीक डाल दें बिही साथ इसके, बैन अल मरई व जौजी, आदमी के दरमियान और उसकी बीवी के दरमियान। तो यानी ये दोनों सीखते थे कि इन दोनों के दरमियान जो तफरीक डाल दे, ये क्या चीज थी कि जादू के जरिए स्पेशल वो वाला जादू, इसके अंदर दिलचस्पी रखते थे जो मियाँ बीवी को आपस में जुदा कर दे, दड़वा दे, उनका रिश्ता खत्म करा दे। सबसे ज्यादा इनको इसमें इंटरेस्ट था। देखिए आप, मुझे जादू से बहुत सारे काम होते हैं ना, लेकिन एक वो जादू भी है जिससे मियाँ बीवी में जुदाई डाल दी जाती है, और ये ऐसा जादू है जिसमें आदमी को अपनी बीवी जहर लगने लगती है, या औरत को वो उस आदमी में क्या नजर आता है कि वो उसको उससे इतनी चिढ़ होती है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं करती, और कोई बजाहिर वजह नहीं, तो वो इनको आपस में जुदा कर देते थे, तलाक तक नौबत पहुंच जाती थी। ये इसको काम को क्यों करते थे स्पेशली? एक तो ये उस वक्त बहुत कॉमन था, ये कॉमन प्रैक्टिस थी। दूसरा ये था कि शैतान को ये काम बहुत पसंद है, ये घर टूट जाए, घर टूटेंगे तो खानदान बिखर जाएगा, और शैतान का सबसे महबूब ये काम है। आपको वो हदीस पता होगी कि शैतान अपना तख्त जो है वो समंदर पे लगाता, और वो हर एक से पूछता है कि अपने जो शैतान सारा दिन कार्रवाइयां करके आए हैं कि तुमने आज क्या किया, तो हर एक अपनी कार्रवाई बताता कि मैंने ये किया। तो कोई कह रहा है मैंने किसी को नमाज से रोक दिया, नमाज भुला दी, उसको पढ़ने नहीं दी, कोई कहता है कि मैंने उससे कोई और ऐसा गलत काम करा दिया, माँ बाप की नाफरमानी करा दी, फलां करा दिया, कोई शिर्क का कहता है, एक कहता है मैंने मियाँ बीवी को जुदा करा दिया। वो खड़ा हो जाता है और उसको गले लगाता है, तूने सही काम किया, क्योंकि ये बहुत दूर तक इसके इफेक्ट्स जाते हैं। तो वो दोनों को जुदा कराने वाला जादू सबसे ज्यादा वो सीखते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया वमा हुम बिदौरीना बिही, हालांकि वो नहीं नुकसान देने वाले, नहीं नुकसान पहुंचाने वाले, बिही साथ इसके, इसके किसके जादू के, मिन अहादिन किसी एक को, इल्ला भी इतने ला, मगर अल्लाह के इजन से। ये जादू चल नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला का इजन हो। कैसी ये बात, जैसे कि मसला ने कोई किसी को गोली मारता है, वो मार नहीं सकता जब तक अल्लाह का इजन ना हो, ठीक है? या कोई दवा खाता है, अब वो दवा में तासीर हो नहीं सकती जब तक अल्लाह का इजन ना हो, दवा नहीं शिफा देगी, असल अल्लाह ताला ने शिफा देनी, तो वो असर नहीं कर सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तो क्या अल्लाह ताला ऐसा चाहता है कि लोगों के ऊपर जादू हो? नहीं, एक याद रखें, अल्लाह ताला की मशीयत है और एक अल्लाह की रजा है। उसकी मशीयत है, उसकी मशीयत है जिसकी वजह से कोई किसी को तंग कर रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई किसी को कत्ल कर रहा है, कोई यानी उसकी उसने इजाजत दी हुई है ना कि लोग जो भी करें, लेकिन ये क्या उसकी रजा, ये यानी वो किसी से खुश होता है, तो वो खुश इन चीजों से नहीं होता, कभी राजी नहीं होता इन चीजों से। तो यहां से पता चला, एक तो बात ये कि जो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं ना कि पता नहीं हमारे ऊपर जादू कर देगा कोई, और इतने खौफजदा रहते हैं, तो इतने खौफजदा होने की जरूरत नहीं। कितना ही बड़ा ताकतवर जादूगर क्यों ना हो, वो जादू चल नहीं सकता जब तक अल्लाह की का इज़न ना आ जाए। और इसका मतलब है कि फिर अल्लाह ताला की पनाह में आना जरूरी है। अल्लाह ताला पनाह में दे देगा, अपनी ले लेगा, तो फिर कोई जादू नहीं चल सकता। वह यतअल्लमूना, और वो सीखते थे, मा यदुर्रुहुम वला यनफाउहुम, जिसने नुकसान दिया उनको फायदा नहीं दिया। नुकसान कैसे दिया? नुकसान एक तो दुनियावी तौर पे भी नुकसान है इसके अंदर, वो कैसे है, ठीक है काम बन गया, लेकिन आपको पता है जो ये जादू की चीजों के अंदर पड़ जाते हैं उसके बाद वो जिन्नात इनको छोड़ते नहीं है, वो इनको ऐसा सताते हैं, इनके पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि इनको दुनिया में भी नुकसान देते हैं, तकलीफें देते हैं, फिर बेचैनियां, बेसकूनियां, और फिर इनसे वो काम कराते हैं जो अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसकी डेप्थ में जब जाएंगे, कि क्या क्या काम कराते हैं वो, इनके लिए नुकसान ही नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। लेकिन माँ या दुर्रूम जो नुकसान देता था उनको, और उनको कोई नफा नहीं देता था। अब देखें कि थोड़ी देर के लिए उसका काम तो हो गया ना, जो जादू से कोई काम कराना चाहता था, जैसे कई हैं वो अमीर होना चाहते हैं तो जादू के जरिए हो जाते हैं, जिन्नात से काम ये लिए जाते हैं और इस तरह हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि ये नहीं होगा, वो काम हो जाता है, तो वो इतना सा तो फायदा हो ही गया ना उसका। लेकिन याद रखें, शरीयत ने ऐसे कामों को जिसमें शर ज्यादा है और खैर बहुत कम है उनको हराम करार दे दिया। जैसे कि शराब है, उसमें शर ज्यादा है, लेकिन कहाँ, इसका सूरह बकरा में ही है ना, आगे जाके आप पढ़ेंगे, इसमें कुछ खैर भी है लेकिन शर ज्यादा है, इसलिए ये हराम है। लेकिन बाकी आप देखें जैसे वैक्सीन्स वगैरह हैं, उनमें खैर ज्यादा है, दवाइयां हैं, उनके शर भी है उनके अंदर, इसलिए क्योंकि उनके इतने आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं। कीमोथेरेपी है, आप देखें उसके अंदर शर भी तो है ना, क्या क्या उसके इफेक्ट है, लेकिन खैर ज्यादा है, तो इसलिए वो चीजें फिर जायज होती हैं। तो ये एक रूल है। वलकद आलिमु, और अलबत्ता तहकीक, वो जानते थे, ला मन इश्तराहु, अलबत्ता जो भी इश्तराहु खरीदेगा इसको, किसको, जादू को, मा लहू फिल आखरती मिन खलाक, उसका आखरत में कोई, एब्सोल्युटली कोई हिस्सा नहीं। मां आ गया ना, और खलाक भी वो कि किसी किस्म का हिस्सा नहीं, यानी कोई खैर उसको आखरत में नहीं मिलेगी। तो एक नुकसान और क्या हुआ जो यहां पे आया ना, मा यदुरुहुम वला यनफाउहुम, एक नुकसान और क्या, आखरत तबाह हो गई। और फिर एक तीसरा नुकसान क्या हुआ, कुफर कर लिया उन्होंने, कुफर में चले गए ना, ईमान खत्म हो जाता है। जादूगर बनने के लिए आपको अपना ईमान बेचना पड़ता है। पहले ये खत्म कर लेते हैं फिर बताती हूँ। वला बिसा, और अलबत्ता कितना बुरा है, मा शरो भी अनफुसाहुम, जो जिसके बदले में उन्होंने बेच दिया अपनी जानों को, यानी उन्होंने अपनी जानें बेच दी ना, अरे आखरत में उनका कुछ भी नहीं, तो समझ ली अपनी जानें बेच दी, जहन्नुम ले ली, और आगे वो अपने लिए क्या खरीद लिया, जहन्नुम खरीद ली, अपनी जानें बेच दी, जानों का सौदा कर लिया। लौकानु यालमून, काश के वो जानते, काश कि उनको पता होता कि उन्होंने कितना बुरा कर लिया, कितना बुरा ये सौदा है। तो अल्लाह ताला ने, देखें सुभान अल्लाह, इतना क्लियरली हमें बता दिया सारा कुछ कि हम कोई चीज को ना, हम ये नहीं कह सकते कि ये हमें पता नहीं थी जादू का, हमें तो नहीं पता था कि जादू ऐसे है, उसमें क्या खबासतें हैं। जिसने अपनी आखरत का हर चीज, यानी आखरत में कोई किसी किस्म का उसका हिस्सा नहीं, कोई सवाब नहीं, कोई आखरत की कोई खैर नहीं, आखिर तो सबने वहीं जाना है मर के, कोई हिस्सा नहीं एब्सोल्युटली, तो कैसे उन्होंने अपनी जानों को बेच दिया। जादू सीखा या जादू किया या जान, और अपनी जानें बेच दी इस शौक में, जहन्नुम के लिए दे दी अपनी जानें, सेल कर दिया। अब देखे ना वो ये तो अब ये इन्होंने सॉन्ग भी बनाया ना, ये तो सारे जो ये जो रैप म्यूजिक जो करते हैं इतने, इसके अंदर एक है वो गाने में खुद कहता है यू हैव टू सेल योर सोल टू द डेवल, या आई हैव सोल्ड माई सोल टू द डेवल, ऐसी कोई वो है मुझे, आई सोल्ड माई सोल टू द डेवल, ऐसी कुछ ऐसा फ्रेज है, खुद कह रहे हैं। क्योंकि जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है ये वाकई आज के दौर में, खास तौर पे पुराने वक्तों में शायद नहीं होती होगी, लेकिन आज के दौर में जो रैप म्यूजिक है, ये जो हिप हॉप है, ये सब, ये इतना ज्यादा शैतानी खेल है, ये शैतानी इंडस्ट्री है जिसके ऊपर आज हमारे बच्चे सर धुनते हैं, और उन्होंने कानों में लगाया तो उनको कुछ नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, वो उनके दिमाग में वो जा रहा है, और उनमें सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं। और बहुत सारे ये रैप सिंगर्स जो हैं ये इस चीज को उन्होंने बाकायदा इसका इतराफ भी किया है कि वो सैटन वर्शिपर्स हैं, वो शैतान की पूजा करते हैं। जो इस थोड़ा भी इस फील्ड को जानते होंगे उनको पता होगा कि किस किस कौन कौन है इनमें से, और वो क्यों हैं उसके वर्शिपर, क्या उनको मिलता है इसको वर्शिप करने। ऐसे नहीं कि शौकिया है बहक गए बेचारे, ऐसे नहीं है, उनको क्या मिलता है, क्या फायदा मिलता है, कुछ फायदा तो होगा, इंसान ऐसे फायदे के बगैर तो नहीं कुछ करता ना, कुछ तो फायदा होगा। वो जो दुनिया का छोटा सा फायदा है वो मिल रहा है, शोहरत पैसा। उन्होंने आगे तक जाना है उसकी वो जो इसमें अपने भी जो भी इनका काम है इसके अंदर एक्सेल करना है, लेकिन इसके लिए उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और कईयों ने ये एतराफ भी किया कि उन्होंने यहाँ तक आने के लिए या ये करने के लिए उनको बहुत हाई प्राइस पे करनी पड़ी है। वो हाई प्राइस क्या है, क्या करते हैं जादूगर भी शैतानों से, जब मैं शैतान कहूं तो मतलब जिन है, जिन शैतानों से एड लेने के लिए, उनसे हेल्प लेने के लिए, वो ऐसे ही थोड़ी किसी का काम करना शुरू कर देते हैं कि उसको ये काम करके दे दे, 24 घंटे के अंदर तुम्हारा ये काम हो जाएगा, महबूब कदमों में आ जाएगा, फलां हो जाएगा, ऐसे ही थोड़ी वो कर देंगे काम, वो भी तो एक कीमत लगाते हैं। और उनकी कीमत क्या होती है, आपके शायद कभी वहमो गुमान में भी ना आ सके कि वो कितनी हाई प्राइस मांगते हैं इसकी। कुछ नहीं रह जाता इंसान का उसके बाद। और आज आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं जो दुनिया में चीज़ों पर नज़र रखते हैं या न्यूज़ पे नज़र रखते हैं उनको बहुत अच्छी तरह बात समझ आएगी, क्योंकि आज हम ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई हैं, तो वो क्या कीमत मांगते हैं। एक बात समझ लें कि जैसे अल्लाह ताला राज़ी होता है किन चीज़ों से, आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, जिक्र अजकार करते हैं, तस्बीहात करते हैं, तौबा इस्तगफार करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, किसी के काम आते हैं, किसी का दुख दर्द दूर कर देते हैं। और शैतान कौन है, अल्लाह का दुश्मन, इंसानियत का दुश्मन। अब उसको किस बात में मजा आएगा, जाहिर है वो बात में तो नहीं मजा आएगा जो अल्लाह ताला को पसंद है। उसके उलट उलट में आप जहां तक भी ले जाएं, वो काम भी मैं अपनी जुबान से नहीं अदा कर सकती, मगर जिन्होंने देखी है न्यूज पिछले कुछ अरसे में उनको अच्छी तरह पता हुआ कि क्या क्या काम लिए गए, और फिर उनको क्या कहा जाता है लोगों को कि आपके काम हम करके देंगे, और वो करके भी देते हैं, मगर किस कीमत पर। सबसे पहली चीज जो वो मांगते हैं ना वो है कि अल्लाह ताला क्या पसंद करता है, तहारत पाकी, और वो क्या पसंद करती हैं? गंदगी। जितनी हद तक फिल्थ हो सकती है, गंदगी हो सकती है, उसको वो पसंद करती हैं। गंदा रहना, नाखून लंबे और बाल ऐसे के कभी ना धोए हो, बढ़ते जा रहे हैं, और गलाजत के अंदर रहना। पुरानी आयात जो अल्लाह ताला का कलाम है, इसको गलाजत के साथ लिखते हैं, पाँव में कुरान को लपेट के, और अस्तग़फ़िरुल्लाह टॉयलेट्स में जाते हैं, हैज़ के खून से कुरान लिखते। ऐसे नहीं वो काम आते। जितना ज्यादा वो इस चीज में एक्सेल करेगा ना, जो जो वो उसको कहता जाएगा, इन बातों को, यही वाली वो बातें हैं जिनको मैं समझती थी कि ये नहीं, ऐसे ही ये बातें कही गई हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। अनटिल मुझे पता चला डार्क वेब का, और अनटिल मुझे पता चला कि क्या क्या हो रहा है। और फिर नमाज को तो पढ़ना ही नहीं है, सूरह फातिहा को और कुरान को उल्टा लिखते, और जनाबत की हालत में रहना, यानी गुसल ही नहीं करना, जनाबत की हालत है, वो पता है नापाकी की हालत है, उसमें रहना। फिर इन्हीं के नामों के ऊपर जानवर जिबा करना, और जानवर जिबा करना तो छोटी बात है, बेबीज को जिबा करना। और एक ऐसा कल्ट ऑस्ट्रेलिया में भी पकड़ा गया था, और यूएस में तो आजकल ये चीजें आप सबको पता है कि क्या चल रहा है। उसे एक बच्ची पकड़ी गई जो क्लोज टू मेंटल केस हो चुकी थी, और जो उसने बातें बताई और जो वहां पे मिली, और इसके अलावा भी बहुत आगे से आगे कड़ियां थी जो मिलाते गए, तो पता चला ये ऐसे लोग बिल्कुल आबादी से हट के जगह लेते हैं, वहां पे बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है, वहां पे उनको शैतान के नाम पे कुर्बान किया जाता है, शैतान की पूजा की जाती है। काला और सुर्ख रंग ये उसको बहुत पसंद है, उन्हीं की सारी चीजें वहां पे थी, और काला जादू, काले ही इनके काम, काली इनकी सब चीजें हैं। और जब इंसानों को जिबा कर दिया जाए तो फिर और जानवर को जिबा करना तो खैर छोटी बात रह जाती है। फिर वो पुकारते, अब बहुत ज्यादा पुकारते हैं उन शयातीन जिन्नों को, उनको पुकारते हैं, जैसे हम कहते हैं या अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हम अल्लाह ताला को पुकारते हैं, वो उनको पुकारते हैं, उससे वो खुश होता है ना। फिर वो कहते हैं इनको, जब वो पुकार लेते हैं ना उनको, जब वो इनके पास फिर हाजिर हो जाते हैं, जब उनको इतना पुकारते हैं, इतना उनको उनके जो भी जो इनके स्ट्रेटजीज हैं, किस तरह से उनको हाजिर करते हैं उन शयातीन जिन्नों को, तो फिर वो कहते हैं कि आप ये काम करके दिखाओ। फिर वो उनसे वो काम लेते हैं, जैसे जो मैंने आपको ये कहा कि तुमने गंदे रहना है, नमाज के करीब नहीं जाना, तुमने शैतान के नाम पे ये जिबा करना है, इस तरह करना है तुमने। इसी तरह नॉर्थ कैरोलिना में एक न्यूज में एक आया था, और मैंने खुद ये देखा, उन्होंने एक जगह पे छापा मारा, शायद वहां क्या उनको वजह थी, वो तो छोड़ के जा चुके थे, लेकिन वहां पे देखा उन्होंने जानवर उल्टे लटके, उनकी खालें खींच के तो उनको उल्टा लटकाया, और उस घर में उन्होंने कहा इतनी स्मेल थी कि वहां पे खड़ा नहीं हुआ जाता था, हर तरफ गंदगी, इतनी गलाजत थी कि कोई इंसान वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकता एक सेकंड भी रहना, इस कदर गलाजत थी, हर तरफ गंदगी बाकायदा पड़ी हुई थी, और इस तरह वो जानवर उल्टे लटकाए हुए थे। और आपको हैरत की बात बताऊं, हालांकि वो जो मुजरिम थे वो उनका अरबों से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उस वहां पे लिखा था इबलीस। अब शायद ये लोग तो ना समझ सकते, लेकिन जब मैंने देखा अल्लाहु अकबर, तो बिल्कुल शैतानी काम यहाँ पे हो रहे थे। फिर वो कहता है कि अपनी महरम रिश्ते से किसी के साथ बदकारी करो, महरम रिश्तों के साथ बदकारी, जिनाकारी तो छोटी बात रह जाती है, महरम रिश्ते को इस चीज के अंदर यूज किया जाए। और फिर छोटी लड़कियों के साथ जैसे कारोबार किए जा रहे हैं, और कहाँ कहाँ उनको पहुंचाया जा रहा है, और जैसे उनको अजियत दी जाती है, तो सिर्फ जिना नहीं है, जैसे उनको अजियत दी जाती है, इससे वो खुश होता है। क्योंकि हर वो काम जो अजियत दे, जो अल्लाह ताला की नाफरमानी का हो, वो काम कराता है, क्योंकि वो अल्लाह का दुश्मन है ना, उसको हर वो चीज पसंद है जो अल्लाह ताला को नाखुश करने वाली है। तो उनको टॉर्चर, उनके जो भी काम मेरे जुबान से भी नहीं निकल सकते, के जो फाइल्स भी आप उनके बारे में जान चुके हैं, जो आपको पता है तो आपको अच्छी तरह पता होगा। और फिर जब ये काम वो करते हैं, तो ये शयातीन जिन अब फिर मान जाता है कि ठीक है, अब मेरी तेरी दोस्ती हो गई, अब दोस्ती हो गई है, अब ये खुद भी कर सकता है और अपना एक छोटा जिन भी इसको दे सकता है कि तुम इसको तुम्हारा ये नौकर बन के रहेगा, तुम इसको अब जो जो कहते रहोगे ये करता रहेगा। जो बड़े बड़े जादूगर होते हैं, जो ज्यादा ही गंद के अंदर होते हैं, उनके पास ज्यादा ताकतवर जिन होते हैं। देखिए जिन्हों की भी तो कैपेसिटीज है ना, कईयों के पास हल्के फुल्के वाले हैं, जैसे इंसानों में कोई स्ट्रांग है कोई वीक है, तो कई हैं जो बड़े स्ट्रांग जिन हैं, कई हैं जो कि कमजोर हैं, इतने ज्यादा नहीं है उनके पास पावर्स हैं। तो जो जादूगर छोटा वाला है उसके पास, जैसे आपको पता है कई लोग जब इनके पास जाते हैं तो उनको कहते हैं फलानी जगह पे जाके ये बकरे की सीरी डाल के आओ, फलानी जगह पे जाके ये करके आओ। वो क्यों कहते हैं, उसका इससे क्या ताल्लुक है? इन चीजों को खुश करते हैं ना, इन जिन्नात को। अच्छा, तो वो छोटे छोटे हैं, ये जो बड़े बड़े हैं इनके पास ज्यादा ताकतवर जिन होते हैं, और वो ज्यादा ताकतवर जिन किस तरह से काबू आते हैं, वो तभी काम करके देंगे जब जितना ज्यादा अल्लाह ताला की डिसोबीडियंस होगी और जितने ज्यादा गलीज काम होंगे, गंदे काम होंगे। और इसके अलावा फिर वो जब अपना एक यानी छोटा जिन दे देते हैं किसी को, तो वो उनके काम करता रहता है, लेकिन जैसे यहां पे आया, नुकसान देता है फायदा नहीं देता, तो वो भी इनके पीछे पड़ जाता है बार दफा, इनको छोड़ता नहीं है, इनको तंग करने लगता है, फैमिली को तंग करने लगता है उनकी। और बार दफा जो ज्यादा बड़े हाई लेवल के काम करते हैं गंदगी में, फिर उनके पास ये बड़े शयातीन खुद उनकी सर्विस के लिए आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि तुम ऐसे ऐसी बोलो, ऐसे ऐसी बातें कहो, जैसे वो अपने, जैसे मैंने अभी ये सिंगर्स का आपको बताया, अपने गानों में उनके ऐसे अल्फाज हैं, और आपने देखा होगा कॉन्सर्ट्स में ऐसी शैतानी चीजें बनाई गई हैं और हेल की तरफ जा रहे हैं। आप आंखें तो खोलें, दुनिया में हो क्या रहा है, देखें तो सही कि किस चीज को हमारी नौजवान नस्ल फॉलो कर रही है। वहां पे लोग मर रहे हैं, और वो कहते न्यूज में उन्होंने बताया कि वो अपना गाना गाता जा रहा था क्योंकि उसने उसको खुश करना था, लोग मर रहे थे वहां पे और वो उस कॉन्सर्ट के अंदर जो भी हो रहा था और वो गाना गाता जा रहा है, क्योंकि वो यही चाहता है कि यहाँ पे मरे लोग और उसकी जो सारे सिंबल्स हैं वो सारे उसी चीज के थे। अब पेरिस में फैशन शो हुआ, उसके अंदर जो शूज और जो चीजें थी वो सारी शैतानी उसकी, इतना ज्यादा तो कभी नहीं था। इस वक्त क्योंकि एंड ऑफ टाइम करीब है, दुनिया खत्म होने वाली, कयामत करीब आ चुकी है, ये चीजें बिल्कुल सरफेस कर गई हैं, अब सामने आ गई हैं, कोई ढकी छुपी चीज नहीं रह गई। तो वो जो हमारे जो आमिल बाबे और वो थे, वो तो बहुत छोटे छोटे रह गए हैं, वो तो जो आम आवाम को जाके जो काम करा दी, वो भी हैं जादूगर, उन्होंने भी ऐसे काम किए होते हैं। कभी भी कोई शैतान, याद रखें, जिन जिन जिनका भी आप सुनते हैं इसके पास मोक्कल है, वो पीर साहब उनके पास मोक्कल होते हैं, भाई वो कोई पीर नहीं है, ये अपने आप को ये लबादे ओढ़ के शुरू के अंदर वो कुरान की कोई छोटी सी सूरत पढ़ लेंगे और उसके बाद वो अपनी आहिस्ता आवाज के अंदर ऐसे कलिमात पढ़ते हैं जिनका आपको कोई पता नहीं है ये कलिमात क्या हैं, और वो ही वो उनको पुकार रहे होते हैं। एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने हस्बैंड की तवज्जो पाने के लिए मैंने किसी को लिखा, वो मेरे से असल में सवाल पूछना चाह रही थी कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा भाई, मैंने इस तरह इंडिया में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इसका विर्द करो, क्या वो लफ्ज था, या बुद्धू, या बुद्धू। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या है, ये तो अल्लाह ताला के नामों में से कोई भी नहीं, या वदूदो होगा। कहने लगी नहीं नहीं ये नहीं है। मैंने कहा नहीं आपको कुछ गलत फहमी होगी। फिर उन्होंने मुझे ला के बाकायदा दिखाया उसके ऊपर ये लिखा हुआ था, ये क्या है, अल्लाह ताला का नाम नहीं है और हम अल्लाह के सिवा किसी को पुकार नहीं सकते, किसी नबी तक को नहीं हम पुकार सकते, ये किसका नाम है। जाहिर है किसी शैतान का, किसी ऐसी चीज का नाम है ताकि वो हेल्प करे, फिर थोड़े से फायदे के लिए, दुनिया के थोड़े से फायदे के लिए लोग कैसे अपनी आखरत को बेच देते हैं। इतना सा फायदा जिससे थोड़ी देर के लिए दुनिया में पैसा मिल जाएगा, फेम मिल जाएगी, शौहर अपना बन जाएगा, या कोई महबूब आ जाएगा, या कोई बीमारी दूर हो जाएगी, या हम बहुत सारे लोग कहते हैं अब जादू हमारे ऊपर हो गया लिहाजा हम इसका तोड़ कराने जा रहे हैं जादू के पास, जादूगर के पास ही तोड़ कराने जा रहे हैं। जादू का तोड़ आप जादू से, हराम का तोड़ हराम से, कुफर का तोड़ कुफर से कराने जा रहे हैं। ये तो कुफर है, और कुरान कह रहा है ये कुफर है, कुफर में पढ़ रहे हो, जबकि कोई जादू नहीं चल सकता अल्लाह के इज़्ज़न के बगैर। तो उसने कुफर किया, आपने भी कुफर कर लिया। लिहाजा जो शरीयत ने हमें चीजें बताई हैं हम सिर्फ उन तक रहें, उससे आगे नहीं बढ़े कि हमने कोई इसको खत्म करना है तो अब हम ये कुफर, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से करते हैं। अब देखें जैसे हमें एक इस चीज का सबूत कि ये जो चीजें होती हैं ये ईमान के साथ नहीं हो सकती, जादूगर बनने के लिए कुफर में एंटर होना जरूरी है। जो जादूगर है वो अपना ईमान बेचता है तभी वो जादूगर बन सकता है, तभी उसका जादू चल सकता है, क्योंकि ये जिन्नात के जरिए सारे जादू होते हैं। तो जैसे आयशा रजी अल्लाह तआला से हमें एक असर मिलता है कि एक दुमतुल जंदल की एक औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के थोड़े ही जमाने के बाद आपकी तलाश में आई और आपके इंतकाल की खबर पाकर बेचैन होकर रोने पीटने लग गई। कहती मैंने उससे पूछा आखिर क्या बात है, तो उसने कहा मुझ में और मेरे शौहर में हमेशा नाचाकी रहा करती थी जो कॉमन बात है। एक मर्तबा वो मुझे छोड़ के लापता हो गया। एक बुढ़िया से मैंने ये जिक्र किया तो उसने कहा जो मैं कहूंगी अगर वो तुम कर लो तो तुम्हारा शौहर वापस आ जाएगा। अब यही चीजें होती ना जब इंसान डेस्परेट होता है ना किसी चीज के लिए कि बस मुझे ये चाहिए, बस ये ऐसा ही हो जाए जैसा मैं चाहती हूं, वहां पे रिश्ता हो जाए या शौहर आ जाए या कोई महबूब है जो मुझे मिल जाए या जो भी, जब इंसान की डेस्परेशन इंतहा को जाती है तब ये चीजें अपना रास्ता पा लेती हैं, तभी इनको मौका मिलता है। कभी भी अपनी ख्वाहिश के गुलाम ना बने कि बस ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा अब उसने कहा कि ठीक है तुम्हें आ जाएगा लेकिन तुम्हें करना वही पड़ेगा जो मैं कहती हूं। कहती मैं तैयार हो गई। वो रात के वक्त मुझे लेके निकल गई और हमने देखा सामने दो कुत्ते थे, वो लेकर मेरे पास आई, एक पे वो खुद सवार हो गई दूसरे पे मैं बैठ गई। थोड़ी देर में हम दोनों बाबुल पहुंच गए। मैंने देखा दो लोग लटके हुए हैं और लोहे में जकड़े हुए हैं। इस औरत ने मुझसे कहा इनके पास जाओ और इनसे कहो कि मैं जादू सीखने आई हूं। बाज जगह पे ये है कि यही हारूत और मारूत थे और इन्होंने कोई नाफरमानी की थी जिसकी वजह से इनको यहाँ पे लटका दिया गया था। और ये काफी इसके अंदर इसराइली रवायत आती हैं, अब इतनी लंबी चौड़ी बात के अंदर हम नहीं जाते, आपके लिए सिर्फ यही जानना काफी है कि हारूत और मारूत थे जिनसे लोग आके जादू सीखा करते थे। तो ये दो लोग थे, इनके पास उसने कहा जाओ उनको कहो कि मुझे जादू सीखना है। तो मैं उनके पास गई उनसे कहा, उन्होंने कहा सुनो हम तो आजमाइश हैं तो तुम जादू ना सीखो, इसका सीखना कुफर है। मैंने कहा मैं तो सीखूंगी। उन्होंने कहा अच्छा फिर अगर सीखना ही है तो जाओ वो फलां तंदूर है उसके अंदर जाके पेशाब करके आओ। अब देखो तंदूर के अंदर पेशाब करना गुनाह का काम है, एक बुरा काम है। तो मैं गई, इरादा किया लेकिन मुझे कुछ दहशत सी मेरे ऊपर तारी हो गई, मैं वापस आ गई। और आके झूठ ही उनको कह दिया कि हाँ मैंने कर दिया। तो उन्होंने पूछा क्या देखा है, मैंने कहा कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने कहा फिर तुम गलत कह रही, झूठ कह रही हो, अभी तुमने ऐसा नहीं किया, अब जाओ वापस और ये करो, अभी तक तुम्हारा ईमान बाकी है, जाओ तुम अभी। तो मैंने कहा मैं तो जादू सीखने आई हूं। उन्होंने कहा फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, जाके पेशाब करो वहां पे। अब की दफा ये गई वहां पे बैठी, लेकिन फिर भी दिल नहीं माना, वापस आ गई। फिर इसी तरह उन्होंने पूछा, फिर इसने कहा कि मैंने तो हाँ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं तुमने नहीं किया। तीसरी दफा फिर गई, उन्होंने भेज दिया। दिल कड़ा करके कहती कि पेशाब करने को मैं बैठ गई। मैंने देखा जब पेशाब किया तो एक घोड़ सवार है, घोड़े पे कोई सवार है, मुंह पे नकाब है और आसमान की तरफ चढ़ गया। तो बड़ी हैरान हुई, वापस आई। उन्होंने फिर पूछा कि भाई तुमने क्या देखा है। उन्होंने कहा मैंने ये देखा। उन्होंने कहा हाँ अब तूने सच कहा है, वो तेरा ईमान था जो तुझसे निकल गया, अब चली जा, जा जाके अब जो भी कहेगी तो हो जाएगा। तो कहती मैंने जाके बुढ़िया से कहा कि उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। उसने कहा बस तुझे कुछ आ गया है, अब तू जो कुछ कहेगी वो हो जाएगा, शैतान यही तो चाहता है। तो कहती मैंने एक दाना गेहूं का लिया, उसको जमीन में डाला और कहा उग जा, तो वो फौरन उग गया। मैंने कहा उस तेरे अंदर बाल पैदा हो जाए, वो बाल पैदा हो गए। मैंने कहा सूख जा, वो सूख गया। मैंने कहा अलग अलग दाने हो जाए, वो भी हो गया। फिर मैंने कहा सूख जा, सूख गया। मैंने कहा आटा बन जा, आटा बन गया। मैंने कहा रोटी पक जाए, रोटी पक गई। कहती ये देखते ही मेरा दिल इतना नादम हुआ और मुझे अपने बेईमान होने का इतना सदमा होने लगा, ए उम्मुल मोमिनीन कसम अल्लाह की, ना मैंने उससे जादू का कोई काम लिया ना किसी और पे किया, मैं यूं ही रोती पीटती नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने के लिए आ गई। लेकिन आप तो अब दुनिया से जा चुके हैं, अब मैं क्या करूं। इतना कह के वो चुप हो गई, सबको उस पर तरस आया, सहाबा कराम भी हैरान थे, ये क्या बात है। फिर उन्होंने उसे कहा कि तुम तौबा इस्तगफार करो और अपने माँ बाप की खिदमत गुजारी करो। अल्लाह हू अकबर। तो ये हमें वाकया ये बताता है कि ये कुफर है और कुफर से ही जादू होता है। अल्लाह हू अकबर। और फिर अब हमें पता कैसे चले कि किसी के पास हम जाते हैं, सारे कह देते हैं बड़ा अल्लाह वाला है जी, उससे जाके आप कहें काम तो वो आपको कुछ पढ़ने को दे देगा, वो आपको ये करेगा वो करेगा, तो आप चल पड़ते हैं अल्लाह वाला समझ के। तो जो जादूगर की निशानियां हैं, या आप कहें कि किसी भी जिसको कहते हैं कि पीर साहब हैं या बड़े मुआलिज है या बड़ा हकीम है, उसके जादूगर होने की क्या निशानी है। अंदर वो जादूगर है लेकिन आपको वो कहा जा रहा है कि पीर साहब है, कुछ पढ़ने के लिए दे देते हैं या फिर आपको कुछ बताएंगे या कुछ है, तो आप उनके पास चले, अब आप उनके पास चले जाते हैं। इनमें से जो मैं आपको बातें बताऊंगी, इनमें से कोई एक चीज भी अगर उसके अंदर होती है तो फिर वो जादूगर है। यानी जादूगर से मतलब है कि उसके पास जिन्नात है, उनसे काम लेता है या जो भी। नंबर वन, पहले तो मरीज से उसका नाम पूछता है और उसकी माँ का नाम पूछता है। याद रखें जब कोई माँ का नाम पूछता है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे गड़बड़ है। फिर वो ये जरूरी नहीं ये सारी चीजें हों, मगर इनमें से कोई चीज भी एक भी हो गई। नंबर टू, मरीज की कोई चीज तलब करता है, मसलन कहता है अपने कपड़ा लेकर आओ, कोई टोपी लेकर आओ, कोई बनियान लेकर आओ, कोई भी पहना हुआ कपड़ा, नया नहीं लेकर आना, पहना हुआ जो उसने, और वो धोया भी नहीं होना चाहिए, वो उसके ऊपर वो अमल करेगा ना। अच्छा, फिर कोई खास किस्म का जानवर कहता है कि वो जिबा करो गैरुल्ला के नाम पे, और या फिर उसको जिबा करके फलां वीराने में फिकवा दो या फिर मरीज के ऊपर उसका खून लगाओ, ऐसी भी बातें कह सकता है। फिर एक और बात ये कि वो ऐसा ऐसी चीजें लिखता है जिसमें टेढ़ी उल्टी सीधी लाइनें खींचता है, जो समझ में नहीं आती कि ये क्या लिख रहा है इसके अंदर। उल्टी सीधी लाइनें होती हैं, उसके अंदर क्या लिखा होता है बिल्कुल समझ से बाहर होता है। ठीक है, जो इल्म सारे जो होते हैं ना वो नफामंद इल्म नहीं होते। उलूम तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि कोई भी इल्म है तो उसको लिख रहे। जादू भी एक इल्म है, जैसे शराब एक मशरूब है लेकिन हराम है, जादू भी एक इल्म है लेकिन हराम है। तो ये जो खाने बना बना के लकीरें खींच खींच के इनके अंदर लिखते हैं, आप खुद सोच लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम में से आप किसी का भी कभी आपने सुना भी होगा कि इस किस्म के वो काम करते थे, कि ऐसे लकीरें खींच खींच के उनके अंदर कुछ खानों में लिखते रहते हो। फिर ऐसे वजीफे पढ़ना जो किसी की समझ में ना आए। देखिए, एक होता है वो दम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत दी है जिसमें कोई शिर्क ना हो, ठीक है, ऐसा दम करना जायज है। लेकिन जब कोई शैतानों को पुकारता है तो वो एक अलग चीज है। एक है कुरानी दम करना, एक वो दम भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जौजा के पास एक औरत बैठी हुई थी, तो आपने पूछा कि ये क्या कर रही, तो उन्होंने फरमाया ये दम कर रही है। फिर आपने फरमाया हफ्सा को भी ये सिखा दो, पहले आपने पूछा कि मेरे ऊपर वो दम पेश करो, यानी दम पढ़ के मुझे सुनाओ, तो वो उन्होंने पढ़ के सुनाया, तो उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। फिर इसी तरह मरीज के ऊपर पर्दा डाल देता है, उसमें खाने बने होते हैं और खानों में हरूफ या नंबर वगैरह लिखे होते हैं, कई पेपर्स के ऊपर लिखते हैं इस तरह। फिर वो ये कहता है कि खास मुद्दत तक आपने अलग रहना है, बिल्कुल किसी के साथ मिलना जुलना नहीं है, कने बिल्कुल अलग से ऐसे कमरे में जहां पे सूरज ना आता हो, बिल्कुल डार्कनेस में रहना है या बिल्कुल लोगों से अलग थलग रहना है। फिर कहता है कि इतने दिन तक आपने, चाहे दिन है चाहे महीने है, आपने बस पानी को हाथ नहीं लगाना। अब पानी को हाथ नहीं लगाएगा तो मुझे बताएं गलाजत में ही होगा ना, गलीज होता जाएगा, जाहिर है जनाबत में है, तो तब भी औरत है हैज के बाद भी तब भी पानी को नहीं हाथ लगाएगी, वुजू वगैरह नहीं करेगी तो क्या होगा। फिर कभी वो मरीज को कोई चीजें दे देता है कि ये जाके किसी जगह पे दफन करके आओ, वहां पे जमीन में तुमने दबानी है ये। अच्छा, फिर कभी कुछ ऐसी चीजें देता है, इसको जला के इसकी धूनी लेनी है। फिर कभी ऐसे अल्फाज पढ़ता है जिनकी समझ नहीं आती कि ये क्या पढ़ रहा है। और ये बहुत कॉमन ये भी बात कि कभी वो मरीज मरीज कह लें या जो भी हाजतमंद उसके पास गया है अपनी कोई मसले के लेके, तो उसको देखते ही कहेगा या उसकी बातों के बाद कहेगा कि अच्छा नहीं ऐसी बात नहीं है ऐसे है, यानी कोई उसके मुतालिक ऐसी बातें बताना शुरू कर देगा जो कि उसके मुतालिक या जिस चीज के लिए बारे में भी वो आया है ना, उसके मुतालिक कोई ऐसी बात बताएगा जो कि इसने तो बताई नहीं है। तो आप कहते हैं हाई इसको कैसे पता चल गया। और ये एक सच्चा वाक्या है कि हज का वाक्य है, ऐसे ऐसे भी लोग हैं, वो भी एक ग्रुप को ले जाने वाले थे और एक मस्जिद के इमाम भी थे और उनके पास भी ये मौक्किल वगैरह थे, लोग उनके पास भी आते थे। आज कोई कह दे ना हमारे पास कोई भी काम है, आपके काम है, ये काम कर देते हैं, ये आपको कुछ पढ़ने को देंगे, फलां करेंगे, देखना गाड़ियों की लाइनें लग जाएंगी, कितने भी पैसे लोग फेंकने को तैयार हो जाते हैं। जब वो वहां पे हज पे गए तो वो एक टैक्सी में बैठे, मेरी आंखों देखा हाल है, वो टैक्सी में बैठे और टैक्सी ड्राइवर को उन्होंने कहना शुरू कर दिया तुम्हारे घर में ये मसाइल हैं तुम्हारे ये। वो तो इतना मुतासिर हो गया कि वाह ये तो कितने पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के अलावा कोई गैब से चीजें पता नहीं चलती थी, वरना आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर तुहमत लगी थी तो आपको पता चल जाता। जब तक वही नहीं आई, यहूदियों ने सवाल किए थे आपको पता चल जाता, आपके पास कोई जिन्नात मोकल नहीं थे, जिन्नातों तबलीग तो करते थे लेकिन ये काम नहीं उनसे लेते थे। कि कोई अगर गैब की बातें किसी को बताने शुरू कर दे कि अब आप अपना मसला लेकर गए हैं, आपने उसको बताया भी नहीं है, लेकिन वो कहता है नहीं 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 ऐसे नहीं है या ये ऐसे है असल में, आप कहते हैं इसको कैसे पता चल गया। और आप दिल ही दिल में इतने मुतासिर होते हैं, ये निशानी है कि वो जादूगर है, उसके पास जिन है जिसने आके इसको बताया। और ये ना, अब बिल्कुल ये ना समझिएगा कि ये ऐसी ही बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल वसूख से मैं आपको कह रही हूं, ये ऐसा होता है। फिर ऐसे तावीज लिख के देता है, या किसी चीज को किसी चीज यानी किसी जगह पे लिख के देता है, मतलब पेपर पे या इसके ऊपर जिसमें हरूफ लिखे हैं या ऐसी चीजें लिखी हैं कि जी इसको घोल के ये पिला दो, जिसको भी आपने कुछ करना है। अब शोहर को अगर अपना बनाना है तो उसके लिए भी बताता है कि ये चीजें इसको पिला देनी है तुमने, पानी में घोल के, या ये पुड़िया या ये, उसके अंदर भी गलाजत होती है, गंदगी होती है। और जादू बहुत तरह के हैं, लोगों में जुदाइयां डालने के भी, मोहब्बत डालने के भी, नफरत डालने के भी, और भी काम कराने के भी। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फॉर्चून टेलर के पास जाता है ना, काहिन, काहिन मतलब ये जो खबरें बताते हैं आगे की, अच्छा आप आए हैं, आप कह रहे हैं कि जी बच्ची का रिश्ता यहाँ पे करूं कि नहीं करूं, अब वो एक खाने बना बना के उसके अंदर से फिर आपको बताएगा नहीं नहीं ये नहीं आपके लिए सही है। उसने जो आपने जब उससे सुन लिया और आपने कहा कि हाँ भाई ये सही नहीं है, उसने बताया ऐसा नहीं हमने करना, इस जगह नहीं रिश्ता करेंगे, या ये उसने बहुत अच्छा बताया, जिसने काहिन से जाके कोई सवाल पूछा और उसकी तस्दीक की यानी उसको मान लिया, उसको सच मान लिया, वो उसने उस चीज से कुफर किया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, यानी इस शरीयत से, इस दीन से, इस कुरान से कुफर कर लिया। जिसने ये काम किया तो सिर्फ उसके पास जाके पूछना भी और उसकी तस्दीक करना भी कुफर में आ जाता है। और ये तो कितना कॉमन है, जगह जगह लोगों ने लिखे हुए कि मुस्तकबिल का हाल जाने, और ये इंसान को बड़ा टेम्प्ट भी करता है कि मैं जरा जान तो लूं। और अब ये इस्तखारा सेंटर आए अपना इस्तखारा कराएं, ये क्या है इस्तखारा कराने, कौन ऐसे इस्तखारे कराता है, कोई होश भी हमें, उसका नाम अगर इस्तखारा ले लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, अच्छा हम शैतान का नाम फरिश्ता रख लें, कोई कहे आए फरिश्ते के पास आए, फरिश्ता आपको करने को ये कहता है, आप मान लेंगे, कोई अपनी भी सेंस इस्तेमाल करनी चाहिए ना इंसान को, इस्तखारे का क्या ये तरीका है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब देखिए जगह जगह इस्तखारे सेंटर खुले हुए, असल में बात यह है कि हमने खुद कुछ नहीं करना, अगर आपको जाहिर है जिस सही किसी के पास आप जाओगे तो वो आपको कहेगा देखें सबसे पहले तो आप, मैं आपको मोटी मोटी बातें बताती हूँ, आप नमाज शुरू करें, आप तहारत का इहतमाम करें, वजू के अंदर रहा करें, आप अपने घर से ये तस्वीरें वगैरह ये चीजें हटा दें, कुत्ता वगैरह आपके घर में हटाएं, आप अपने घर में से गाने बजाने और इन चीजों को हटाएं, आप ये मतलब अपनी ये सूरतें पढ़ा करें, ये हिफाजत की दुआएं पढ़ा करें। अब ये को करने के लिए तो काम करना पड़ता है, वो हमसे होता नहीं, तो लिहाजा हम कहते हैं तो ठीक है, अब हम किसी बाबे के पास चले जाते हैं, वो खुद ही करके कुछ कर लेगा। इस्तखारा करने के लिए भी नमाज पढ़नी पड़ेगी ना, दो नफल पढ़ने पड़ेंगे, फिर इस्तखारे की दुआ पढ़नी होगी। हमें तो चूके कुछ समझ ही नहीं आती, ख्वाब का समझ ना आना या ख्वाब का इंतजार करते रहना, हमें ख्वाब ही नहीं आता, अब उसके लिए हम इस्तखारा सेंटर चले गए तो ये ख्वाब देखेंगे और हमें बताएंगे। अब आप मुझे बताएं किस जगह पे लिखा हुआ है कि ख्वाब आएगा, और कहाँ पे ये लिखा हुआ कि इस्तखारे का मतलब होता है कि आपको गैब की खबर मिल जाएगी। बस अगर काम वो इस्तखारा मतलब खैर मांगना, खैर मांगी है अल्लाह ताला से, अल्लाह तू खैर कर देना, अगर ये काम अच्छा है तो इसमें खैर डाल देना, नहीं अच्छा तो दूर कर देना, बस ये दुआ है। ये तो नहीं है कि आप फॉर्चून टेलिंग का जरिया समझते हैं इस्तखारे को। अच्छा कई लोगों ने कुरान को, जब कुरान से हिदायत नहीं लेनी तो फिर और काम लेने हैं ना, जादूगर तो उसको उल्टा लिखते हैं, पीछे से शुरू करते हैं और आगे तक उल्टे सारे हरूफ की सूरत में सारा उल्टा लिखते हैं। अल्लाह की नाफरमानी, जिस चीज से भी अल्लाह नाराज होता हो उससे शैतान खुश होता है, उन्होंने बस उसको खुश करना है। तो जब वो कुरान को किस तरह फिर इस्तेमाल करते हैं, फाले निकालने के लिए, वो कोई हिदायत की किताब है, उसको फाल निकालने के लिए इस्तेमाल करें। इस तरह का पेज, एक ने मुझे बताया, इस तरह पेज हम खोलते हैं, फिर उसके अंदर इतनी पता नहीं कौन सी लाइन पे जाके देखते हैं, फिर वहां पे जो ये आयत होती है, फिर उससे हम मतलब निकालते हैं। या अल्लाह, कभी सहाबा ने ऐसा किया? कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया? उनके सामने कितने कितने वक्त थे फैसले करने के, उहद में निकले या नहीं निकले बाहर। मशवरे का हमें बताया गया कि सूरह शूरा मशवरे को ही बताती, मशवरा करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, इस्तखारे की एक चीज बताई और मशवरा बताया बस, इसके अलावा तो तीसरी चीज नहीं बताई कि आप बैठ के फाले निकालना ही। उनके पास भी तो कुरान था, क्यों नहीं उन्होंने फाले निकाली? हमारे से ज्यादा कुरान को जानते थे, लेकिन फाल निकाल रहे हैं लोग बैठ के। वो किधर हम पहुंच गए हैं, क्या काम कर रहे हैं, और जिधर देखो उधर इस तरह के बाबे बैठे हुए हैं जो ये काम चला रहे हैं, और उनके बड़े अच्छे नाम है। अगर उनका नाम जादूगर रख दिया जाएगा तो आप जरा डरेंगे जाते हुए, या आप शायद जाएं ही ना, तो बहुत सारे लोग पुट ऑफ हो जाएंगे। लेकिन जब बाबा जी कह के बड़े पहुंचे हुए कह के बड़े नेक हैं बड़े ये हैं, तो फिर तो उसका तो काम बन गया ना, उसकी तरफ तो सारे ही जाएंगे। नेक भी जाएगा, बद तो जाएगा ही, वो तो उसको तो कुछ भी मिल जाए तो जाएगा, जो नेक होगा वो भी चला जाएगा। जो हक वाला होता है ना, वो आपको ये चीजें बताता है, ये पढ़ो। अब हमें कोई कह दे सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह नास पढ़े आप, ये इतनी दफा आपने पढ़नी है, रात को पढ़े, या कुरान में से कहीं भी पढ़ने को कह दें, कोई मसला नहीं है। ये आयतें पढ़ें, ये आयतें पढ़ें, यहां से पढ़ें, कोई मसला नहीं है, वो पढ़ें आप। लेकिन जो आपको उल्टी ये काम करने को कहे, उसकी खुद नहीं हमें समझ आती कि ये गलत है? तो जब आयतें पढ़ने को कहते हैं वो, तो वो उसमें हमें काम करना पड़ता है। असल में कई हैं जो बताते हैं इस तरह से कि आपने इस तरह करना है। सबसे पहले तो वो कहते हैं नमाज की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी के बगैर तो कुछ है ही नहीं। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जब अपने पीरियड्स के दिनों में होती हैं, तो उस वक़्त तो उनका और ही ज़्यादा उनके ऊपर शैतान हमला करता है, क्योंकि गंदगी में रहती ना, उसको बस गंदगी पसंद है। बाथरूम्स में हम जाते हैं, हम दुआ नहीं पढ़ के जाते, अंदर शयातीन है, हम कहते हैं हमारे तो बाथरूम बहुत क्लीन है, इसलिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं दुआ पढ़ने। उनको गंदी जगह पसंद है, वहीं पे बसेरा करते हैं। घरों को गंदा रखा हुआ है, जिस्म को गंदा रखा हुआ है, बाथरूम गंदे हैं, या वैसे भी वो गंदगी की जगह है, तो सफाई सुथराई को वो नहीं पसंद करता। ये तो अल्लाह ताला है, अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, पाक लोगों को पसंद करता है वो, तो ये नापाक को पसंद करता है। अब किसी के ऊपर ऐसी चीज हो जाए तो फिर उसका क्या किया जाए? हजरत वहाब फरमाते हैं, बेरी के 7 पत्ते लेके सिल बट्टे पे कूट लिए जाएं और पानी मिला लिया जाए, फिर आयतुल कुर्सी पढ़ के इस पे दम किया जाए, और जिस पर जादू किया गया है उसको 3 घूंट पिलाया जाए, बाकी पानी से उसको गुसल दे दिया जाए, उसके ऊपर बहा दिया जाए। और सबसे आला चीज जो अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी दी, वो क्या थी? सूरह फलक और सूरह नास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन जैसी कोई भी नहीं है चीज। इसी तरह आयतल कुर्सी भी, वो भी शैतान को दूर करती है। इसी तरह ये सूरह बकरा, ये शैतान को दूर रखती है, घरों से भी दूर रखती है। तो इसलिए इन चीजों में पढ़ने की बजाय, कि जो हम ये शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, इनकी बजाय हम इस चीज की तरफ आए कि अल्लाह ताला ने जो हमें जायज हर एक चीज का ना, अल्लाह ताला ने सोल्यूशन दिया है। जो भी दुनिया के अंदर बीमारी है, उसका एक उसकी दवा है। तो अगर किसी ने जादू कर दिया है, तो फिर उसकी कोई तो हल भी तो होगा। वो हल यही है जो अल्लाह ताला ने कुरान में उतार दिया, अल्लाह की पनाह ले लो और इस पे यकीन रखो कि अल्लाह ताला की पनाह में जब मैं आ गया, उसकी हिफाजत में आ गया, कोई चीज ना मुझे शर पहुंचा नहीं सकती। जो जितना डरपोक है, जो जितना डरता है, हाय हाय मेरे पर, उतना ही उसके ऊपर वो असर करते हैं। जाहिर आप स्ट्रांग होंगे, अब देखें आप स्ट्रांग हैं तो आपके ऊपर जरासीम असर नहीं करते। इस तरह आप स्पिरिचुअली जब स्ट्रांग होते हैं, अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन हो, नमाज है, कुरान है, जिक्र आप करते रहते हैं, इन दुआओं को पढ़ते रहते हैं, हिफाजत आपने जब आपने ये पढ़ ली ना, ये दुआएं हिफाजत की, सुबह भी शाम भी, सुबह शाम तो 3-3 दफा ये तीनों कुल पढ़ने, लेकिन बाकी टाइम हर नमाज के बाद एक एक दफा पढ़ने, तो आपने समझ लिया अपने गिरत एक हिसार कायम कर लिया, आपने गिरत एक समझ लिया शील्ड आपने डाल दी। अब वो शील्ड है, वो आपको प्रोटेक्शन है आपकी। अब वो जो जिस वक्त से जिस वक्त तक है, सुबह से शाम तक, अब शाम को दोबारा आपको इसको रिन्यू करना है। अगर रिन्यू नहीं करेंगे तो फिर आप एक्सपोज हो जाएंगे, फिर आपको शाम को फिर अज़कार के अंदर यही बिस्मिल्लाह लजीला या दुरुआउज भी कलिमात तामाती, फिर ये आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की ये आखिरी आयात कम अज़ कम पढ़ ली जाए, और शुरू की भी मैंने आपको बताई थी जो शुरू में जब हमने सूरह बकरा पढ़ी थी कि ये आयतें पढ़नी है, ये सब पढ़ के आप अपने आप को समझ लें एक प्रोटेक्शन के अंदर ले आते हैं। अब वो इसके अंदर एंटर नहीं हो सकता और वो आपको फिर परेशान नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग इस चीज के से गाफिल रहते हैं उनके ऊपर फिर ये चीजें असर करती हैं। और ये इसके अंदर मैं आपको एक और वाक्या बताना चाहती हूँ। एक जादूगर ने जब तौबा कर ली थी तो उसने बताया, उसने कहा मैं जिन्नात को लोगों पे जादू करने के लिए भेजा करता था, तो कुछ लोग ऐसे थे जिन पे फौरन असर हो जाता था, लेकिन कुछ के बारे में जिन्नात आके कहते थे हमने उसकी आवाज सुनी है मगर हमें वो नजर नहीं आता, कुछ के बारे में वो कहते थे हमने उसको दूर से देखा है लेकिन वो हमारी निगाहों से गायब हो गया, कुछ के पास वो जाके वापस आके कहते थे हमें वो मिला ही नहीं। फिर कहते वो जो जादूगर जिसने तौबा कर ली उसने कहा फिर मैंने जो ताकतवर जिन्नात थे उनको भेजा लेकिन वो भी नाकामों के पलट आते थे और कहते थे वो हमें मिलता ही नहीं है। जाहिर है वो जाते हैं ना उसकी तरफ, उसको जो भी उसको करना होता है उसके लिए उस जादूगर उनको भेजता है। तो आखिर मैंने फिर उससे भी बड़े जो बड़े खतरनाक किस्म की और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग जिन है उनको भेजा, तो लेकिन वो भी कहने लगे हमने मशरिक देख लिया मगरिब देख लिया सारी जमीन हमने छान मारी हमें वो मिल ही नहीं रहा। तो मैं हैरान होकर कहता था वो अपने घर में बैठा है या अपनी दुकान में बैठा है कैसे नहीं तुम्हें मिल रहा, वो जवाब देते हम वहां गए पर नजर नहीं आता वो, तो असल राज क्या था। तो जादूगर जो जिसने तौबा की उसने कहा कि जब मैंने तौबा की तो तब मुझे ये समझ आई कि इंसान एक दूसरे से एक रूहानी हिफाजत में आ जाता है जिक्र के जरिए, नमाज की पाबंदी के जरिए। और वो लोग जिनके पास ये हिसार नहीं ना होता, हिसार समझते हैं यानी ये जायरा जो आपके इर्द गिर्द आपको एक हिसार कायम होगा, वो उनके शिकार करना जिन्नों के लिए इन शैतानों के लिए बहुत आसान होता है। और जो लोग कभी कभी ये करते हैं जैसे अब कभी पढ़ ली नमाज कभी नहीं पढ़ी, या कभी अजकार कर लिए कभी नहीं करे, कभी सुबह को कर लिए शाम को नहीं करे, ये जिन्नात ना दुश्मन है ना ये। तो अब वो फिर उनको जब भेजता है तो फिर वो कहते हैं हमने आवाज सुनी लेकिन हमें नजर नहीं आया, क्योंकि वो कभी पाबंदी करते थे कभी नहीं करते थे, लेकिन आवाज सुन रहे हैं उसकी या शायद उसको देख भी रहे हो। और वो लोग जो हमेशा जिक्र अस्कार करते हैं हमेशा नमाज पढ़ते, वो अपने गिरते कैसा हिसार कायम करते कि फिर तो ताकतवर जिन भी पूरी जमीन छान के आ गया, ढूंढता रहा वो मिला ही नहीं। हालांकि वो वहीं होता है बस इनको नहीं नजर आता। आपको पता है ना सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 45 में भी ये है ना कि जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आप पर और इन लोगों के दरमियान जो आखरत पे ईमान नहीं रखते एक छुपा हुआ पर्दा हायल कर देते हैं। कुरान इतनी बड़ी हिफाजत है, तो असल ये नहीं है कि हम ये तदबीरें करने के लिए इन्हीं के पास चले जाएं, हम कुरान को पढ़ें, हम नमाज की पाबंदी करें और जो असकार हमें बताए गए हैं जो शैतान से हिफाजत किए हैं उनकी पाबंदी करें। जो अल्लाह के जिक्र के साथ जिंदगी गुजारता है शैतान और क्या उसके लश्कर क्या कोई भी नहीं उसको नुकसान पहुंचा सकता, और इसके लिए ही हमें स्ट्रोंग रहना है। अल्लाह का बंदा जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और जानता है कि सबसे बड़ी ताकत मेरे रब की है, वो कभी भी नहीं इन चीजों से फिर डरता। फिर आगे देखें तो अच्छा जो जो भी ये काम करेगा ये ना हो कि कोई ये दुनिया के थोड़े थोड़े फायदों के लिए जाके अपनी सारा कुछ अपना गारत कर रहा है अपनी आखरत ही तबाह कर दे, इससे बेहतर है कि इंसान इन चीजों से बचे।